मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 30 जुलाई 2019 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं नीरज अरोड़ा, आपका गांव है जमालपुर कला जिला हरिद्वार उत्तराखंड से, शशि कुमार यादव, आपका गांव है रसियारी जिला दरभंगा बिहार से, संजेश राव, आपका गांव है इकौना जिला श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से, और काजल भाटी इंदौर मध्य प्रदेश से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं बाघों का संरक्षण इस पर बात करूंगा, लेकिन बहुत ही संकेत के तौर पर ही बात कर सकूंगा क्योंकि आज मेरे पास दूसरी घटनाएं काफी हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, एक बात कहना चाहूंगा। कल मैंने हिंदी भाषा के प्रति यूपीएससी का जो रवैया है उस पर कुछ बातें की थी और मुझे विश्वास है कि आप में से जिनको भी मेरी बात सही लगी होगी वे डेफिनेटली एक्शन में आ गए होंगे। मेरे पास एक मेल आया है, उसमें उन्होंने पिन कोड की याद दिलाई है। शायद मैं कल जो संघ लोक सेवा आयोग का पोस्टल एड्रेस है उसमें पिन कोड बताना भूल गया था। यदि आप लोगों ने भेज दिया हो तो कोई बात नहीं, बिना पिन कोड के भी मैं समझता हूं कि आपका जो पोस्टल भेजा है जो आपने वो पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इसका जो पता है, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, उन्होंने मेंशन किया हुआ है न्यू बिल्डिंग, लेकिन चलिए न्यू बिल्डिंग भी आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। मैं एड्रेस दोहरा रहा हूं, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग धौलपुर हाउस शाहजहां रोड नई दिल्ली, पिन कोड है 11001, यानी कि 2 बार 1 है, 3 बार 0 है और फिर 1 है, 11001। और एक बार फिर मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक अपने आवेदन नहीं भेजे हों प्लीज वो चुप न बैठें, अपने आवेदन भेजें। देखिए, अवतार जब होते हैं कभी कभी हमें खुद भी अवतार का रूप धारण कर लेना चाहिए क्योंकि समस्या हमारी है, तो बेहतर होगा कि आप सब अपने आप को फिलहाल अवतार ही समझ लें और समझ करके थोड़े से एक्शन में आ जाएं और कम से कम आवेदन तो संघ लोक सेवा आयोग को भेज ही दें ताकि हमारी समस्याओं से वो वाकिफ हो सकें और वाकिफ होने के बाद डेफिनेटली वो कुछ न कुछ कदम उठाएंगे ही, इतना विश्वास हमें रखना चाहिए। आइए दोस्तों, तो पहले कुछ दूसरी खबरों पर को देख लेते हैं। अखबार में आपने पढ़ा, न्यूज में भी आपने सुना है कि एक योजना है अनियमित जमा योजना, जिसे हम पोंजी स्कीम कहते हैं, पोंजी स्कीम, इससे संबंधित एक विधेयक पारित किया गया है और इस विधेयक के तहत जो पोंजी योजनाएं हैं उनसे लोगों को सुरक्षित बनाने की कोशिश की गई है। अब मैं बताता हूं कि ये बेसिकली है क्या। देखिए, जो पोंजी है ये एक व्यक्ति का नाम था, उसका नाम चार्ल्स पोंजी इसका नाम था। 1920 के आसपास ये आदमी बहुत कुख्यात हुआ था और कुख्यात इस मायने में था कि ये लोगों को आश्वासन देता था कि तुम इतना पैसा जमा करो तो इसके बदले में मैं तुमको इतना रिटर्न दूंगा, मतलब 8-8% प्रति माह रिटर्न देने की बात करता था वो। और इसके बाद पता लगा कि पैसा लिया और वो चपत हो गया, गायब हो गया। तो उसका नाम चूंकि चार्ल्स पोंजी था तो इस तरह की योजनाओं को अब पोंजी योजनाओं का नाम दिया गया है। आपने कई जगह सुना होगा कि ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को लालच देते हैं कि भैया तुम 5,000 जमा करो तो 2 साल में तुमको 10,000 मिल जाएगा। जो थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके बहकावे में आ जाते हैं, वो अपना पैसा दे देते हैं और कुछ दिनों के बाद पता लगता है कि वो गायब हो गया है। तो इनसे जनता को बचाने के लिए यह विधेयक लाया गया है और इसके तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को अधिकार है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। 1 साल से 10 साल तक की जेल की सजा दी जा सकती है और 2 लाख से 50 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, यहां तक कि उनकी संपत्ति भी अधिग्रहित की जा सकती है। आपने सुना है पिछले कुछ सालों से कि इस तरह की योजनाएं काफी चल रही थी और जिन पर अभी केस भी चल रहे हैं, उनके जो मालिक थे वो जेलों में बंद भी किए गए। तो यह एक विधेयक है, आपको आपकी जानकारी में होना चाहिए। मित्रों, एक दूसरी खबर है कि ओडिशा का रसगुल्ला, उसको जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग का मतलब है भौगोलिक संकेतक। ये बौद्धिक संपदा कानून के तहत तो नहीं है, लेकिन उसके जैसा ही कुछ कुछ है। इसका नाम होगा ओडिशा रसगुल्ला। और खासकर होता यह है कि जब कहीं के भी प्रोडक्ट को इस तरह का जीआई टैग मिल जाता है तो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। मतलब अब रसगुल्ले तो बहुत जगह बिक रहे हैं, उनका नाम भी रसगुल्ला है, लेकिन इस पर्टिकुलर रसगुल्ले को जब कहा जाएगा ओडिशा रसगुल्ला तो इसकी इसी नाम से मांग जनरेट होगी। इससे पहले भी बहुत से ऐसी वस्तुओं को जीआई टैग दिए गए हैं। कुछ समय पहले मुझे ध्यान आ रहा है कि जो अल्फांसो जो आम होता है, अल्फांसो आम को भी जीआई टैग दिया गया था और प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। उसमें यह है कि कृषि के क्षेत्र में क्या सुधार किया जाना चाहिए, इसको लेकर उन्होंने लिखा है और यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। उसमें उन्होंने एक सजेशन दिया है कि जो कृषि अभी तक राज्य सूची में है, सरकार को कोशिश करना चाहिए कि वह इसे समवर्ती सूची में डाल दे, यानी कि स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दे। देखिए, जब स्टेट लिस्ट में है तो कृषि से संबंधित जो कानून होंगे वो राज्य बनाएंगे। जैसे ही वो समवर्ती सूची में आ जाएगा तो राज्य तो कानून बना ही सकते हैं, केंद्र को भी उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा। तो उस एडिटोरियल में यह माना गया है कि यदि ऐसा हो सका तो कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े सुधार की तरफ बढ़ाया गया कदम होगा और केंद्र सरकार भी कृषि से संबंधित कानून बना सकेगी। और उसमें उन्होंने बकायदे उदाहरण भी दिया है कि इससे पहले ऐसा किया जा चुका है, जैसे शिक्षा है, वन है, वन्य जीव संरक्षण है, ये सब भी पहले राज्य सूची में थे, बाद में समवर्ती सूची में डाले गए। तो ये एडिटोरियल कमेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों, 35A और जो कश्मीर का मामला है, आप देख रहे हैं कि अब ये काफी हॉट मामला हो रहा है, काफी ये ज्वलंत हो रहा है, काफी गर्म गर्म हो रहा है। वहां की जो लोकल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, 35A को यदि हटा लिया गया तो फिर कश्मीर में तो बिल्कुल पता नहीं क्या का क्या हो जाएगा, यहां के लोग क्या कर बैठेंगे। मतलब वो धमकी दे रहे हैं कि नहीं, 35A हटाया नहीं जाना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार का यह मानना है कि नहीं, 35A हटाया जाना चाहिए। चलिए, इस पर अभी तो बहस चल रही है, लोग अपने अपने ढंग से बातें कर रहे हैं। तो अब यह मामला धीरे धीरे और ज्यादा गर्माता चला जा रहा है और ये अपने आप में मुझे लगता है कि वर्तमान में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से। 35A क्या है, कुछ समय पहले हम लोगों ने इस पर बात की थी। आज मैं दैनिक भास्कर का आपको एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, आर्टिकल जो बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा गया है और मैं चाहूंगा कि इस आर्टिकल के आप बहुत अच्छे नोट्स तैयार कर लें। विराग गुप्ता जी ने लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और ये NDTV पर भी ब्लॉग लिखते हैं, मैं लगातार इनके ब्लॉग पढ़ता रहता हूं। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है और इस पर आपको अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। कुल मिलाकर 35A यही है कि जो जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन होगा, किनको वहां संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा, इससे जुड़ा हुआ है, पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, कल हम लोगों ने कर्नाटक मामले पर कुछ बातें की थी और उसको लेकर के भी आज दैनिक भास्कर ने बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट है जो इन्होंने लिखा है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं इस एडिटोरियल कमेंट पर कि इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें इसमें से आपको कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, खासकर इंडियन डेमोक्रेसी को समझने के लिए, इंडियन लेजिस्लेचर को समझने के लिए और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके फ्रीडम को समझने के लिए। तो प्लीज इसे आप देख लेंगे। दोस्तों, आज आपको जो करेंट कंटेंट प्रोवाइड किया गया है वह स्वरोजगार से जुड़ा हुआ है। स्वरोजगार जैसे व्यावहारिक विकल्प पर ध्यान दे सरकार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और आज मैं आपको नई दुनिया का एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का है, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि भारत को लोगों को रोजगार देने के बारे में सोचना चाहिए। चलिए वो रोजगार देने के बारे में बात कर रहे हैं, यहां हम स्वरोजगार की बात कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल छपा था और इसमें आपको कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे, प्लीज आप उन नए पॉइंट्स को नोट कर लें। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, बाघों का संरक्षण। इसे आप अपना जो आपकी जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसका अंश मान सकते हैं। और यह एक ऐसा विषय है जो प्री में भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण का ही एक तरह से हिस्सा है, तो बाघों पर प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी इस बार आने की संभावना है। और क्यों संभावना है, इसका बहुत सिंपल सा रीजन है। कल अगर आपने डीडी चैनल न्यूज देखा हो तो उसमें बाघों पर बहुत लंबी बात की गई थी और उसका कारण यह था कि अभी जो गणना हुई है बाघों की, तो भारत विश्व में टॉप पर आ गया है, टॉप पर। और दुनिया के जो 75% बाघ हैं वो भारत में है। भारत में लगभग 3,000 बाघ रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जहां तक स्टेट का सवाल है, तो मध्य प्रदेश राज्य के नागरिक इस बात पर गर्व कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश इसमें पहले स्थान पर, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर हैं। कल इस पर बहुत लंबी बहस आई थी, उस बहस को अगर आपने सुना हो तो काफी चीजें आपकी जानकारी में आ गई होंगी। तो मेरा सजेशन है कि टाइगर प्रोजेक्ट जो 1973 में शुरू किया गया था, आप उसे थोड़ा सा देख लें। और इसके बाद टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए सरकार क्या क्या कर रही है उसको जरा ध्यान से पढ़ लें, आपके लिए इतना ही पर्याप्त होगा। प्री एग्जामिनेशन में देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ, उस समय यह बंगाल टाइगर के लिए शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत कहां हुई थी, जिम कार्बेट नेशनल पार्क में। और उस समय मिसेस गांधी, 1973 की बात है, तो मिसेस गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। इसका पर्पज यही था कि किस तरह से टाइगर के पॉपुलेशन को प्रिजर्व किया जाए और बकायदे, मतलब उनके वातावरण में प्रिजर्व किया जाए और उनके लिए जो बायोलॉजिकल जो एरिया चाहिए जहां वो नेचुरल तरीके से रह सकें, उसकी भी व्यवस्था की जाए। तो मित्रों, ये मैंने बहुत ही आपको संक्षिप्त सी जानकारी दी है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, इसलिए मतलब आप कह लीजिए कि मुख्य विषय के तहत उनके पूरे आयामों को समेट पाना जरा सा मुश्किल काम है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस टॉपिक को पढ़ें, बहुत आसान सा टॉपिक है और सच पूछे तो बहुत प्यारा टॉपिक भी है। तो इस साल के अब मेंस की तो मैं बात नहीं कह सकता क्योंकि बहुत नजदीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के हम मेंस में इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको बाकायदे तैयार रहना चाहिए। इंटरव्यू आप देंगे, इंटरव्यू के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आप दूसरे स्टेट सिविल सर्विसेज में अपीयर हो रहे हैं तब भी इस टॉपिक के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भारत में पहले स्थान पर आना एक बहुत गर्व की बात होती है और भारत ने अपने इस लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर लिया है, वो और भी बड़ी बात है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। कुछ क्लिपिंग्स के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोग अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, रविन्द्र कुमार संदलपुर बिहार से, सचिन अड़गांवकर अकोला महाराष्ट्र से, उत्कर्ष अग्रवाल नई दिल्ली से, मोहम्मद अमानुल्ला मधुबनी बिहार से, सुभाष कुमार ठाकुर, तेजिंदर सिंह, सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से और गौरव कुमार दिल्ली से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।